मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म।
ओम शांति। आप सभी ठीक हैं? मौज में हैं? खूब लाभ ले रहे हैं? केवल श्रवण करते हैं या मनन भी करते हैं? मनन भी करते हैं, क्योंकि श्रवण मनन और फिर होता है जीवन में धारण करना। सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो सुनने का करते हैं, और जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, सुनना सोर्स, सुनेंगे तो उसके ऊपर मनन भी कर सकेंगे, वक्त पर याद भी आ जाती है। अगर सुना ही नहीं होता है याद नहीं आएगा, वक्त पर याद आती है, हाँ फला समय पर ये बात कही गई थी। और उससे भी बढ़िया होता है आचरण में ले आना, धारण कर लेना। और जो बात धारणा में आ जाती है वो जीवन का भाग बन जाती है, और यही चीज तो हम सब चाहते हैं ना, यही चीज चाहते हैं कि अपने जीवन में हमारे इतने अच्छे संस्कार आ जाएं जिससे स्वयं हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे सके। हम लोग कहते हैं एक होता है स्वयं से सर्टिफिकेट लेना, वो सबसे कठिन सर्टिफिकेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कुछ भी छिपा नहीं पाता है। 24 घंटे रहने वाला व्यक्ति भी आपको इतना अच्छी तरह से नहीं जानता है जितना आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट होता है स्वयं को सर्टिफिकेट देना। दूसरा होता है सर्टिफिकेट जो कि हम अपने साथियों से लेते हैं, ठीक है ना, साथी भी हमको सर्टिफिकेट देते हैं। और तीसरा एक और सर्टिफिकेट है, बताएंगे कौन सा? यस, कौन सा? ऊपर वाले का। चलो एक घड़ी के लिए हम उसको, वो तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, चलो एक घड़ी के लिए हम उसको किनारे भी कर दें। एक और सर्टिफिकेट है, सोसाइटी, वो तो आ गए ना, समाज सोसाइटी आ गई, पुण्य बताऊं, वो सर्टिफिकेट है अपने घर वालों से लेना, घर के सदस्यों से। आपने देखा होगा माँ जब अपने बच्चे के लिए कहती है तो क्या कहती है, भई ये घर में तो ऐसा है लेकिन बाहर इसकी बड़ी तारीफ सुनते हैं। प्रायः आपने देखा होगा हरेक की तारीफ बाहर में बहुत अच्छी है, बाहर हम सबको अच्छा सर्टिफिकेट है, बड़े नेक आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छे मैनर्स हैं, बड़े शांत चित्त हैं। और कभी घर वाले वहां सामने सुन रहे हो तो मुस्कुराते हैं, कहते हैं हमसे पूछो ये क्या है, ऐसे होता है, होता है। तो मैं प्रायः कहा करती हूं अपने भाई बहनों को कि सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है और जेन्युइन वो अपने घर वालों से मिलता है। जब हम घर लौटे, अभी आपके लिए घर लौटे, तो कुछ परिवर्तन आप में दिखाई देना चाहिए। तब तो कहेंगे ना भाई यहां गए थे तो फायदा लेके आए, थोड़ा सा कुछ परिवर्तन दिखाई दे, चाहे क्रोध घटा हो, चाहे और कोई बात, कोई भी बात, तब फायदा है। जैसे आप लोगों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, ऐसे हम लोगों का भी होता है। हम लोग जब माउंट आबू में जाते हैं तो वहां पर जो हमारी चीफ्स हैं वो हमको ये बात कहती हैं कि देखो आप सब यहां पर आए हो, लेकिन जब आप अपने अपने सेवा केंद्रों पर लौटो तो आपके लोगों को महसूस होना चाहिए कि ये लोग कुछ अपने अंदर विशेष भर करके आए। ये सबसे अच्छी गिफ्ट आप अपने घर वालों को दे सकते हैं, सरप्राइज गिफ्ट। अच्छा, इस समय का जो सेशन है वो हम लेंगे किस तरह हम ईगो के ऊपर विजय प्राप्त करें। ईगो जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं अहंकार, और अहंकार इसने दो शास्त्र क्रिएट कर दिए। कौन से? रामायण भी अहंकार का ही है और महाभारत भी है, दोनों में है। और कुछ हद तक श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन जब बहुत प्रश्न उत्तर श्री कृष्ण के साथ करते हैं तो अंत में श्री कृष्ण उन्हें क्या कहते हैं, हे अर्जुन अब तू अपनी पंडिताई छोड़ और जो मैं तुझे सुनाता हूं सो तू सुन, तब तेरा कल्याण होगा। अहम मैं हूं, इसको यदि परिभाषित किया जाए तो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं आ सकती हैं। व्हाट इज ईगो? ईगो क्या है? अहंकार क्या है? कोई भी बताए, कोई भी बताए, अहंकार क्या है? कोई हार्ड एंड फास्ट पत्थर पे लकीर जैसी परिभाषा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, परंतु आप बताएंगे तो अच्छा होगा। मैं और मेरा, हां जी, और बोले मैं पन, दूसरे को तुच्छ और स्वयं को विशेष, राइट? और भी कोई बात? मैं राइट हूँ, सामने वाला गलत है। कई प्रकार की परिभाषाएं हैं और जो आपने बताई हैं, एक परिभाषा जो मैंने लिखी है और वो कोई हार्ड एंड फास्ट पत्थर पे लकीर जैसी नहीं है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ईगो इज द अटैचमेंट, इसमें जो प्रमुख बात है, टू एन आइडिया, सिचुएशन, पर्सन और द वे आई वॉन्ट थिंग्स टू बी। ईगो प्रोड्यूसेस रॉन्ग इमेज ऑफ मी। अटैचमेंट है एक तरीके की, अपने आइडिया के साथ, सिचुएशन के साथ, व्यक्ति के साथ, और जिस प्रणाली से ये काम किया जाए उसके साथ भी अटैचमेंट। अगर कोई मुझे कहता है, बहन जी आप ये कार्य जो कर रहे हैं, अगर इस कार्य को आप इस विधि से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं अगर अहम वाली हूँ तो मैं क्या कहूँगी? हाँ ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन इस समय जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही आप कर लें, ठीक है ना? आई वॉन्ट उसी बात को लिया जाए। और आप जानते हैं जो व्यक्ति अहम वाला होता है, थोड़ा सा ईगो जिसको होता है, लोग उसकी झूठी तारीफ भी खूब करते हैं। और वो बेचारा भोलेपन में आकर के क्या सोचता है, शायद मैं यही हूँ, ठीक है? तो रॉन्ग इमेज, आपके पास राइट बात नहीं आती है, रॉन्ग इमेज आपका अपना क्रिएट अपनी नजरों में हो जाता है, जो बहुत बहुत अहितकारी होता है, क्योंकि राइट बात आपके सम्मुख नहीं है। अब ये अटैचमेंट, ईगो से आगे नुकसान क्या होता है? जो मुझे अपनी अंतर आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। कोई बात होगी हम कहेंगे इस तरीके से, लेकिन अंतर आत्मा तक, अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए अगर कोई चीज बाधक होती है तो वो मेरा ईगो होता है। और भी कोई चीजें होती हैं, और भी हो सकती है, इग्नोरेंस हो सकती है, इनोसेंस हो सकती है, और भी कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक जो सबसे प्रमुख है वो है अहंकार, जो मुझे अपनी कॉन्शियसनेस तक पहुंचने नहीं देता, अपनी अंतरात्मा से मुलाकात करने नहीं देता। और वो क्या कह देता है, नहीं नहीं जो तुम कह रहे हो सो ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस कुछ और कहना चाहती है, लेकिन अहम उसको दबा देता है। आए थे इस संसार में तो हम खाली हाथ आए थे, ठीक है, परंतु चलते 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 कितने अहंकारी हम बन जाते हैं। दो प्रकार के गुण होते हैं, एक होते इनहेरेंट और दूसरे होते अक्वायर्ड। जो गुण मैंने संसार से लिए, अक्वायर किए, उसका क्या अभिमान? यहां से लिया और यहीं रहने वाला है, परंतु हम करते हैं। आपको याद होगा सिकंदर का, जो दोनों हाथ कहता मेरे निकाल के बता देना कफन से, कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। इसी रीति से ईगो हमें अपनी बॉडी का हो सकता है, मैं बहुत पहलवान हूँ, मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत फला हूँ, आदि आदि। दूसरा पजेशंस है ना, आप पाएंगे कभी हम लोग जब बैठते हैं तो लोग अपनी अपनी जो उनकी पजेशंस होती हैं, कोई ना कोई रूप से कभी कभी वर्णन कर देते हैं। पता लग जाता भी, इसके पास वीडियो कैमरा भी है, इसके पास ये चीज भी है, उससे उनको थोड़ी सी ईगो की उनकी पूर्ति होती है। रिलिजन, धर्म, मेरा धर्म जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है, दूसरे का धर्म नहीं। नेशनैलिटी, जर्मन्स जो कहते हैं हमारा ब्लड सबसे शुद्ध है, नेशनैलिटी का भी ईगो होता है। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस का भी ईगो होता है। उपलब्धियां हैं, परंतु एक है उपलब्धि का होना, आपने प्राप्ति की है, अच्छी बात की है, परंतु एक होता है नहीं उसे जताना, वो अहम का रूप ले लेता है। जहां पर मैं कभी कभी देखती हूँ किसी की डिग्री अगर कम लिख दी जाती है पर चांस, तो क्या कहते हैं, भाई इसको थोड़ा सा रीराइट कर लीजिए या दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा आप अटेंशन दे दीजिए, ये कंप्लीट नहीं है आदि आदि। सो इट कैन बी एनीथिंग क्वालिफिकेशन। और याद रहे जो हम लोग सीखते हैं यहां, अगर मुझे अपने गुणों का अभिमान हो गया तो गुण का अभिमान होना माना गुण को घुन लगना, घुन होती है ना। और अच्छा मिसाल हमको देते हैं कि देखो जिस तरीके से भगवान को जब भोग हम लगाते हैं तो उस भोग में हम कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया फल चढ़ाया जाए, ठीक है। अगर कोई फल में कीड़ा लगा हुआ हो उस फल को हम स्वीकार नहीं कराते। इसी रीति से अगर मेरे गुणों में थोड़ा सा अहम आ जाता है, अहम की स्मेल आ जाती है, वो भी प्रभु को स्वीकार नहीं होते। गुण मेरे सेवा में नहीं लगते हैं। मान लीजिए कोई बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत अच्छी स्पीच देती है, लेकिन अहम है, कोई उन्हें निमंत्रण देगा, आप आइए और स्पीच दीजिए, कोई नहीं देगा। मुझसे कहते हैं आप अपनी टीम बनाओ, मैं किससे रिक्वेस्ट करती हूँ, अच्छे अच्छे हैंड्स दो, और वो कहते दीदी ये बहुत अच्छा है, ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी सेवा करता है, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना इसमें थोड़ा अहम है। तो अहम के वशीभूत जो होगा उसका बिहेवियर प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। वो कभी मुख से अनाप शनाप भी बोल सकता है, कभी आपकी इंसल्ट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं भाई मैं उनसे ही काम चला लूंगी, मुझे ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है। नतीजा ये होता है जो हमारे गुण हैं, गुण हमारे अंदर है, लेकिन वो गुण सफल नहीं होते, सह फल नहीं होते, क्योंकि वेस्ट चले जाते हैं, उपयोग में नहीं आ रहे हैं। वेयर देयर इज अटैचमेंट देयर इज रेजिस्टेंस। अभी ये डेवलप हो रहा है, नया नया है। अब मैं क्या कहती हूं, अगर मेरी अटैचमेंट होगी तो मैं क्या कहूंगी, रेजिस्ट करूंगी ना, नहीं नहीं अभी ये नया नया बन रहा है, इसको थोड़ा सेट हो लेने दीजिए, अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सेट हुए हैं। और अचानक अभी हम हेडक्वार्टर अंदर में क्या है कि यहाँ तो मैं मालिक हूँ, और वहाँ जाऊंगी मेरे जैसे वहाँ 20 और हैं। आप जानते हैं हर एक कोई अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनना पसंद करता है, यूनियन में आना कम पसंद करते हैं। रीजन Hence, जहां अटैचमेंट होगी, जहां ईगो होगा, ईगो इज ड्यू टू अटैचमेंट, जहां अटैचमेंट होगी वहां रेजिस्टेंस जरूर होगी। देन वेयर देयर इज रेजिस्टेंस देयर इज फियर, भय रहेगा कि मेरे से ये छिन ना जाए, मेरे से ये ले लिया ना जाए। और जहां फियर है, फियर इक्वल्स ईगो, ठीक है। फर्दर, ईगोइस्ट व्यक्ति की पहचान क्या है। एक बार एक बड़ी अच्छी छोटी सी कहानी बचपन में हमने पढ़ी थी। कहते एक बार एक सन्यासी थी, गांव के बाहर उनकी कुटिया थी, और लोग जाते थे हफ्ते में एक दिन और दर्शन देने के लिए वे कुटिया से बाहर आते थे। लोग खाना पानी ये सब ले जाते थे, और सन्यासी बाहर आते सब लोग कहते थे वाह वाह वाह, खूब तारीफ करते थे कि कमाल है, इतनी तपस्या, ऐसा स्वरूप। अब क्या हुआ, उनमें से एक ने कहा कि भाई इनकी जो तपस्या है वो तपस्या नहीं, ये वाह वाह की रोटी खाते हैं उसकी है। अगली बार से हम आएंगे हम दर्शन करेंगे लेकिन हम वाह वाह नहीं बोलेंगे। ऐसे ही करना शुरू किया, एक बार, दो बार, तीन बार, धीरे धीरे सन्यासी जो थे वो थोड़े से उदास होने लगे। ये क्यों उदासी, क्यों उदासी का कारण है वाह वाह की रोटी नहीं मिल रही, केवल ये। तो झूठी वाह वाह, एक बात सदा याद रखें, बचपन में हमें बताई गई थी, अगर आपकी प्रशंसा होती है याद रखिएगा आपकी निंदा भी होगी, महिमा होती है तो निंदा भी होगी। जब आपको महिमा मिले तो आप सातवें आसमान पे चढ़ जाएं, और अगर किसी ने आपकी थोड़ी सी भी निंदा कर दी आप धरती पर आ जाएं, नहीं, समान। महिमा मिले पास ऑन कर दीजिए प्रभु को, प्रभु ये आपके कारण से है। याद है हम लोग आरती गाते हैं घर में तो क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हे प्रभु आपका दिया हुआ आपको ही अर्पित है। वो धन के लिए मात्र नहीं कहा गया, परंतु अपनी वो सब बातें जिनको हम कहते ये मेरी है, प्रभु की दी हुई है, प्रभु प्रसाद समझकर उसे बांट दीजिए, अपने पास ना रखिए महिमा को। और जहां निंदा होती है वहां पर निंदा से उदास न हो जाएं, लेकिन उस बात को एनालाइज करके देख लें कि मेरी गलती कहां है, मेरी सीखने योग्य बात कहां है। अच्छा है अगर कुछ लोग आपकी निंदा करते हैं, अच्छा है, आपको हिंट मिल रहा है कि आप कहां कहां अपनी करेक्शंस लाने ला सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा एटीट्यूड रहता है तो हम अहम के वशीभूत नहीं होते हैं, उसके अंदर जिद्द होती है। क्यों, वो अपनी बात से टस से मस नहीं होना चाहता, जिद्दी स्वभाव का होगा, नहीं नहीं आप इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ये ऐसा ही ठीक है आदि आदि। अब्यूजेस अथॉरिटी, अहंकारी व्यक्ति अपनी अथॉरिटी को भी अब्यूज कर देगा। गेट्स अपसेट एंड इरिटेटेड इजिली, अगर आप थोड़ा सा कुछ कहेंगे उसको तो अपसेट हो जाएगा और चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। क्यों, आगे आएगा कारण उसका, अहंकारी व्यक्ति के समीप कोई जाना पसंद नहीं करता, न क्रोधी के समीप कोई जाना पसंद करता न अहंकारी, तो भाई दूर बास खुश बास, अपनी दोस्ती उतनी ही है जो दूर तक चले, ओम शांति हेलो कर लिया उतना पर्याप्त है, परंतु ज्यादा नहीं। फर्दर छोटी सी भी अगर उसको उपलब्धि हो जाती है ना तो समझता है कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, क्या समझता है मैं पंसारी बन गया था। ये भूल जाते हैं कि आपके जैसे अनेका अनेक और हैं। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना, कहते हैं रामायण में हनुमान जी को एक बार अहम आया कि अब तो भगवान को मेरा, भगवान को भी मेरे से काम पड़ा। कैसे, तो एक बार पूछा, भई सब कुछ ठीक ठाक है, श्री राम ने पूछा शाम को, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चीज की जरूरत तो नहीं, कुछ बात तो नहीं। तो जो सेनापति थे उनके, तो बोले सब कुछ ठीक है लेकिन सवेरे के लिए नाश्ता नहीं है। तो फिर बोले वैसे तो नाश्ता भी तैयार है, सिर्फ लाने की बात है। तो चुप रहे सब। हनुमान जी आप जानते हैं कैसे करते थे उनके विशेष, तो हनुमान जी चुप करके सिर्फ ऐसे करके बैठे रहे। श्री राम ने देखा और हनुमान जी के मन में आया अब तो भगवान को मेरे से काम पड़ा। तो सबने भी कहा हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, हनुमान जी आप ये काम सेवा करेंगे? हाँ जी जरूर। लेकिन अंदर में थोड़ा अहम तो आ गया ना। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला जय श्री राम और पहुंच गए जिस पर्वत पर नाश्ता था। पहुंचे तो वहां बुजुर्ग माता थी अंदर, बूढ़ी माता, तो आवाज लगाई माँ माँ मैं नाश्ता लेने के लिए आया हूँ, भगवान श्री राम ने भेजा है। माता ने कहा ये पत्थर हटा दो और आ जाओ। तो हनुमान जी ने पत्थर हटाने की कोशिश की, वो पत्थर तो हिले नहीं। माँ पत्थर तो हिलता ही नहीं। अरे एक हाथ से ऐसे करो पत्थर हट जाएगा, तुम अंदर आ जाओ मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ। वो फिर लगे, खूब लगे, पसीना पसीना हो गया, तो गुस्सा भी आने लगा अहंकार के साथ साथ। या माँ नाश्ता देना है तो दो नहीं तो मैं जाता हूँ। तो माँ तो भक्तिन थी, उन्होंने उठी बोलते बोलते आई और एक हाथ से माता ने ऐसे किया और वो पत्थर जो था वो हट गया। हनुमान जी देखते रह गए और प्रवेश किया, नाश्ता लिया। नाश्ता लेके उन्होंने एक अंगूठी जो श्री राम ने दी हुई थी वो माता को देने लगे निशानी, कि भैया भगवान की निशानी। माता ने कहा ये अंगूठी जो है ना वो कुआं है, कुएं में जाके डालो। तो माँ ये भगवान श्री राम की दी हुई है, कह रही हूं ना कुएं में डालो। जब कुएं में डालने को गए तो वहां क्या देखा, उस जैसी अनेकों अंगूठियां। ये छोटी छोटी कहानियों से हम लोगों को शिक्षा दी जाती है। कभी हम सोचते हैं ये काम मैं ही कर सकती हूं और कोई नहीं। कभी कभी हमारे मुंह से निकल भी जाता है, क्या ये मैं ही हूं जिसने ये किया है, और कोई होता तो और कोई नहीं कर सकता। ये क्या प्रदर्शित हो रहा है, मेरा थोड़ा सा। इसलिए दिखाया गया था कि जो ईगोइस्ट होता है उसके अंदर ये भावना अहम की, अपने आप को महान, थोड़ी सी उपलब्धि होगी तो समझेगा पता नहीं मैं क्या से क्या बन गया। नहीं, जो उपलब्धि आपको उपलब्ध हो, आप देखिए अपने देश की संस्कृति में कितनी बढ़िया बात है। आप कुछ भी प्राप्त करते हैं, कुछ भी अच्छा काम करते हैं, पहले घर में क्या सिखाया जाता है, जाओ भगवान के मंदिर में पहले होके आओ, यही सिखाते हैं ना, जाओ मंदिर जाओ अर्पित करके आओ। वेरी नाइस थिंग। अगर हम इसको आत्मसात करें, जीवन में अपनाएं, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो अहम उत्पन्न नहीं हो सकता, दिमाग वाला समझता है अपने आप को सबसे दिमाग वाला और सबको कम दिमाग वाला, कंपैरिजन में considers himself to be great intellectual। वैसे भी कहा जाता है अपना दिमाग और दूसरे का धन सदा ज्यादा दिखाई देता है। दूसरी बात, cannot tolerate the appreciation of others because of his own jealousy and hatred। तो वो tolerate नहीं कर सकता है। आप देखेंगे जब हम लोग कभी आर्टिस्ट से बात करते हैं, कभी कुछ विशेष ऐसे कला वाले होते हैं उनसे बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, दो आर्टिस्ट से बात करने, दोनों से इकट्ठी नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे भाई। थोड़ा सा जेलसी, टॉलरेंस नहीं होती है और सहन नहीं कर सकना दूसरे की प्रशंसा, ये निशानी है कि अहम बस रहा है। फर्दर, अपने आप की सदा प्रेज करेगा और दूसरे की इनएडवर्टेंटली क्या कर देगा, इंसल्ट कर जाएगा। अपनी प्रेज करते करते दूसरे की इंसल्ट कर देगा। कितने अच्छे अच्छे दोहे हमारे कवियों के बनाए हुए हैं। विल ऑलवेज फील इंसल्टेड, कोई भी बात होगी ना तो उसे लगेगा कि हमारी, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी बात नहीं मानी गई, मेरा सुना नहीं गया, इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, कुछ ऐसी बात है। दूसरी बात, रिमेंबर इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो। अगर आपको कोई बात अंदर चुभ जाती है, आपको लगता है कि चोट पहुंची है, आघात हुआ है, तो माना वो ईगो है। ईगोइस्ट इज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, बातों नहीं बहुत। एंड आप जानते हैं, जितना व्यक्ति बाह्य मुखी होता है उतना अंदर से खाली होता है। जिसको कभी कभी हम लोग कहते हैं भाई बातें तो बहुत बड़ी करता है लेकिन इसके अंदर कोई दम है नहीं। सो अहम वाला टॉकेटिव, बाह्य मुखी और अंदर से खाली सा होता है। उसका रीजन है क्योंकि बहुत ऊपरी सतह पर वो विचरण करता है, डीप डाउन नहीं होता, नेवर गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्रता की शक्ति नहीं होगी। एकाग्रता की शक्ति नहीं होती, समझेगा आई एम द मास्टर ऑफ ऑल। और ये बात उसको सच्चाई रियलाइज करने नहीं देती। रहीम जी ने कितना सुंदर कहा, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दी जय डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तनवारी। सुई का अपना महत्व है, तलवार का अपना महत्व है, तलवार का स्थान सुई नहीं ले सकती और सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकती। इसलिए हर आत्मा को जो उसका पाठ, जो उसका रोल, वो उसको देना। अपने यहां पर दिल्ली में एक प्रेस, बहुत पुरानी प्रेस थी, मैं पुरानी बात बता रही हूं, और नहीं होता था, फैमिलीज की फैमिलीज पहले एम्प्लॉयड हो जाती थी ऐसे। लेकिन जब थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा होता है, यूथ होते हैं, उनका दिल करता है और थोड़े बेटर जॉब पे जाएं और थोड़े बेटर पे। लेकिन एक वफादारी होती है जो कि उसके साथ लिंक होता है मैनेजमेंट के साथ, मालिक के साथ। तो इस व्यक्ति ने रिक्वेस्ट की कि उसकी थोड़ी सी तनख्वाह, पर्क्स आदि थोड़े बढ़ा दिए जाए। मालिक ने कहा नहीं। मालिक ने मन में ये सोचा है अब ये जाएगा कहां, और तो कहीं जाएगा नहीं, इतने समय से यहीं पर है, यहीं पे रहेगा। परंतु उसके मन में था और मन में आया कि इसने मेरी बात मालिक को माननी चाहिए। मालिक भी थोड़ा सा दम भी था, उसने इग्नोर कर दिया। नतीजा ये हुआ, ये व्यक्ति काम छोड़ करके चला गया। काम छोड़ के चला गया, कुछ अचरज की बात, सारी प्रेस चलना बंद हो गई, चले ही नहीं। अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को बुलाया, चले ही नहीं। कहां कहां से कितना नुकसान हो रहा है, परंतु काम हो ही नहीं, प्रेस चले ही नहीं। बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल लोगों ने कहा भी उसी आदमी को बुला लो जो था, उसके जाते सारी ऐसी दुर्घटना हुई है, तुम उसको क्यों नहीं बुला लेते, उसको बुला लो। कहता और कुछ भी कर लूंगा, उसको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, नहीं बुलाओ। पड़ी रही प्रेस। आखिर लोगों ने बहुत कहा, बच्चों ने कहा, उस व्यक्ति को बुलाया और पूछा, क्या तुम इस प्रेस को ठीक कर सकते हो? उसने कहा, मैं ट्राई करूंगा, पक्का तो नहीं कह सकता। वो अंदर गया और वहां पर थोड़ी देर उसने देखा, किया घंटा, किया सारी देखी, और थोड़ी देर के बाद प्रेस चलना शुरू। कारण ये था कि वो जाते जाते 10 पैसे का कॉइन हुआ करता था, वो कहीं फंसा के चला गया था, जिससे कि प्रेस। अहम के कारण कितना नुकसान कर लिया। हम सब करते हैं, और हम सब कोई में कितना सबके अंदर है। इसलिए एक तो बुद्धि में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि मेरे सिवाय ये काम और कोई कर नहीं सकता, कदापि नहीं। मेरे जैसे अनेक, आज मैं जाऊंगी मेरी जगह भरने वाले, अरे संसार चल रहा है तो मेरे जाने से काम रुक जाएगा। इसलिए जितना समय मिला है इसको खुश दिल होके, हर्षित होकर के इसका उपयोग करते चलो, सेवा भाव से। ईगो डिस्टेंसेस अ पर्सन फ्रॉम अदर्स। मैं आपको एक घटना, सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। हमारे पास जैसे आप लोगों का ग्रुप आया, ग्रुप्स आते रहे हैं। लेक्चर के बाद मैं अपने ऑफिस में गई और एक प्रिंसिपल आए, आंखों में आंसू। मुझे आश्चर्य हुआ, इतने लंबे चौड़े और आंख में आंसू। मैंने कहा, मैंने कुछ आपको गलत बोल दिया या कुछ दुख दिया? बोले, नहीं दीदी। मैंने कहा, तो क्या हुआ? कहते, आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे अपने अहम के कारण मैंने अपने परिवार को तोड़ दिया। मेरी वाइफ मायके गई, मैंने उसे अपने अहम के कारण वापस बुलाया नहीं। मेरा बेटा मुझसे नाराज होके चला गया, अब मैं वापस जाऊंगा। रोई रोई। मैंने कहा, कोई हर्जा नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका परिवार टूट जाए, कोई नहीं चाहती। आप एक काम करेंगे, अगर रियलाइज किया है तो एक काम करेंगे, आप अपनी वाइफ के पास जाइए यहां से लौटने के बाद, और उसको कहिए कि मैंने ये रियलाइज किया है, मेरी ये गलती थी। और पुनः जैसे वो 40 साल वाला प्रिंसिपल आया ना वापस, ऐसे ही ये व्यक्ति ने बहुत अच्छी हमें खबर भेजी कि दीदी, अब मेरा परिवार पुनः बहुत सुखी शांत हो गया। कितनी खुशी होती है। रियलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम परिवर्तन अपने जीवन में ले आ सकते हैं। और ईगो होगा लोग हमसे दूर रहेंगे, दूरी. देन ईगो क्रिएट्स ऑब्स्टिकल्स. स्वाभाविक है, मीटिंग्स में आपने देखा होगा कौन सी चीज ऑब्स्टिकल बनती है, ईगो. अच्छा मेरी बात नहीं सुनी जाती तो मैं जाता हूं, ईगो. और अधिक नुकसानकारक बात, जिस व्यक्ति में ईगो होगा उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होगा. अ बिग नो एंट्री बोर्ड यहां होता है, कोई अच्छी भली बात एंटर नहीं कर सकती. क्यों? वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता और मानता है. नतीजा ये है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्टॉप्स. एक महिला थी पुरानी, जो जसलोक हॉस्पिटल है ना बॉम्बे का, उनकी माँ. टोटल जैसे हम लोग समर्पित है ना, ऐसे वो समर्पित थी. बहुत पुरानी बात है, हम लोग छोटे छोटे होते थे. वो हमको हमेशा बुला के कहती, तीन शब्द मेरे याद रखना जिंदगी में. बहुत थोड़ी संस्था भी हमारी, बहुत छोटी सी थी. वो तीन शब्द कौन से थे? झुक झुक, मर मर, सिख सिख. सदा झुकना. उस समय ये बात हमारे गले से उतरती नहीं थी, यंग थे सोचते क्यों झुके. मर मर अर्थात खुद को ही नमना पड़ता है, गम खाना पड़ता है. और सिख सिख सदा सीखना. जब कभी हमने गुजरना, उन्होंने ये बात कहनी. अब हम लोग उनको कभी कभी चिढ़ा भी देते थे, क्योंकि देखते थे वो बैठी हैं, इन्होंने बुलाना, हम वही गाना गाना शुरू कर देते थे. तो हंसी में कहती थी, अच्छा तुम लोग आज मेरा मजाक बना रहे हो, एक दिन आएगा जो तुम इस बात को याद करोगे. आज देखिए हम उन बातों को याद करते हैं. किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जो झुकता है उसमें जान होती है. अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है. जो झुकता है, फ्लेक्सिबल है, तब तो झुक रहा है. और क्वालिफाइड, उसे रिगल आउट करना आता है. और अगर अकड़े रहे तो अपरिवर्तनीय है, चेंज नहीं आएगा. सो कैनॉट बिकम ग्रेट, प्राइड हैते फॉल. बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पत्ते को छाया नहीं और फल लागत अति दूर. क्या लाभ? होंगे क्वालिफाइड, होंगे बहुत अवार्ड लिए हुए, होंगे अपने घर में, आप अपने घर राजी, हम अपने घर राजी. इसलिए अहंकारी का सदा सच्ची खुशी, आनंद स्वप्न में भी उपलब्ध नहीं होगा. एक वो कांटा साथ में लगा रहता है. अब कैसे हम जीतें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले, व्हाट एम आई? आई एम नॉट व्हाट आई डू. जो मैं करती हूं वो मैं नहीं हूं. आज मैं शिक्षिका हूं, 50 साल बाद शिक्षिका मैं नहीं रहूंगी. आई एम नॉट व्हाट आई पजेस. मकान मेरा है, मैं मकान नहीं हूं. जहां से मैं आई हूं वो भी मैं नहीं हूं. जो मेरे विश्वास है वो मैं नहीं हूं. इट्स ए पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी. मैं एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी, अविनाशी हूं इसलिए निर्भय हूं। परंतु फिर भी हम सब भयभीत भी होते हैं, तनावग्रस्त भी होते हैं, उसका कारण क्या? कारण ये है, हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अपनाते नहीं है। इतना ही अगर हम कर लें, अपना लें, पर्याप्त है। आगे चलेंगे सतीश। अब मैं आपको कुछ 5-6 टिप्स दे देती हूं, जिसको आप सहज रूप से जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, आपने देखा होगा इस कॉम्प्लेक्स में एक एक घंटे के बाद रिकॉर्ड बजता है। ऑब्जर्व किया आपने? ऑब्जर्व किया? और उस एक घंटे के बाद हम लोग क्या करते हैं? जब रिकॉर्ड बजता है, वो बजता है एक मिनट के लिए। उस एक मिनट में हम अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं। जो भी काम कर रहे हैं उससे हम अपने आप को विथड्रॉ करते हैं, डीप डीप साइलेंस में जाते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स। दूसरी बात, जितना हो सके अपने आप को कम बोलने की उस आदती बनाएं। एज इट इज हमें कितना बोलना पड़ता है स्कूल में, कितना बोलना पड़ता है, मौन साइलेंस वो साधन है जिससे हमारी शक्ति रिकुपरेट होती है। अनुभव ये कहता है जब आप डीप साइलेंस में होते हैं उस समय आपकी इंट्यूशन काम करती है, आपकी मेमोरी काम करती है। बी क्वाइट। नंबर 2, लेट गो। जिन चीजों से हम अत्यधिक अटैच्ड, अगर मैं उनके साथ इतनी अटैच्ड हूं, अगर वो मेरे से ली जाएं और मैं परेशान हो जाऊं, बेटर है मैं आदत डालूं उनसे अपने आप को ढीला करने की। एक अहंकारी व्यक्ति को मुंह की खानी पड़ती है, उल्टा नशा। आप लोगों ने शायद महाराणा प्रताप का मिसाल सुना होगा। एक व्यक्ति महाराणा प्रताप का रोल करते हैं ड्रामा में, और बहुत अधिक उनको नशा चढ़ जाता है, क्योंकि है भी वो ऐसा रोल, तो उनको वो नशा चढ़ जाता है कि मैं महाराणा प्रताप हूं। बाहर निकलते हैं तो वहां चेतक तो नहीं मिलता उनको, परंतु डीटीसी की बस होती है। चढ़ते हैं, कंडक्टर कहता है टिकट। बोला कैसी टिकट? जानते नहीं मैं महाराणा प्रताप हूं। कंडक्टर समझ जाता है तो ठीक है। 2 स्टॉप के बाद बस रोक देता है और कहता है महाराणा प्रताप जी चित्तौड़गढ़ आ गया। तो हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए अपने आप को लूज करें, उसे निश्चिंत करते जाएं। तीसरी बात, लिसनिंग। लिसनिंग मींस सुनने की शक्ति, और ये एक आर्ट है लिसनिंग इज एन आर्ट। और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना, समय मिलता है? समय निकालना होगा। डीप डाउन अपने अंदर जाएं और सुने, लिसन टू योर डीप कोर। वेक अप, याद रखिएगा कोई भी चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती, उसके पीछे फोर्स होता है। और वो फोर्स कौन सा है? आपकी हैबिट्स, आपकी ट्रेट्स, ये सब बातें हैं। आदत अच्छी है या खराब है, आपकी कॉन्शियसनेस में बसी हुई है। और वो उसको पुश और पुल करती है। हेंस रिमेंबर, नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। अगर कोई बात है उसको कॉन्शियसली ध्यान रख करके उसे समाप्त कर दें। आपने देखा होगा जब बच्चे गलत भाषा बोलते हैं, गाली देना सीख जाते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी करे ना, वो शब्द बोल करके फिर बात करते हैं कि तुम्हारी आदत पड़ गई है, तुम्हें इसे समाप्त करना होगा। सो वेक अप टू योर ओन हैबिट्स, देन नो योर सेल्फ। एंड लास्ट होती है, घटना घटती है, इट विल पास ऑन, चली जाएगी, ये नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगी। कल मैं आ रही थी तो एक बहुत अच्छा गीत सुना, पुराना है, किस चीज का गुमान, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। माटी ही ओढ़न, माटी ही बिछावन, किस चीज का अभिमान। हम अपने पास, हम अपने साथ सुई भी तो नहीं ले जा सकते। कहते एक बार, मुझे अचानक एक कहानी याद आ रही है, एक बार एक व्यक्ति था, उसके तीन मित्र थे। एक मित्र था उसके साथ हर घड़ी का उठना बैठना था, दूसरा मित्र था जिसके साथ हर घड़ी का उठना बैठना तो नहीं परंतु फिर भी काफी था, और तीसरा मित्र ऐसा था जिसको कभी कभार वो पूछ लेता था। अब क्या हुआ, कलयुगी दुनिया है और काजल की कोठरी में काहुई सयानो जाए, एक ली काजल की लागी ए फैलाए। थोड़ा बहुत असर हो जाता है, कलयुगी दुनिया है, अब इसको कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा तो गवाही चाहिए थी। अपने पहले मित्र के पास गया, मित्र क्या तुम गवाही दोगे, ऐसी ऐसी बात है। वो बिल्कुल नकार गया, मैं क्यों तुम्हारी गवाही देने लगा, तुमने किया तुम भुगतो। इसको बहुत धक्का लगता है, जो मेरा इतना समीप का फ्रेंड और नकार किया, बहुत उदास हो जाता है। याद आता है मेरा दूसरा मित्र है, उसके पास चलता हूं, दूसरे मित्र के पास गया, मित्र क्या तुम गवाही दोगे। उसने कहा देखो भाई, मैं गवाही तो नहीं दे सकता कोर्ट में, लेकिन तुम्हें मॉरल सपोर्ट देने के लिए कोर्ट के दरवाजे तक छोड़ करके आ सकता हूं। अब इसका काम तो नहीं बना। अचानक उदास होके जब बैठा होता है, तीसरा मित्र स्वतः आता है। मित्र तुम? कहा ये बात है, तुम क्यों घबराते हो, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा। तीन मित्र कौन थे? पहला मित्र धन, जिसके पीछे व्यक्ति अपना सर्वस्व खो देता है और जीवन के अंतिम क्षणों में यदि आप मेरे ऊपर नोटों की बोरियां भी उड़ेल दें, बचा नहीं पाएंगे। लेकिन धन के कारण अपना सब कुछ समाप्त कर देता है। एक वक्त था हम लोग कहा करते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज का जमाना क्या है? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन, धन बुरी चीज नहीं है। धन के बिना आज की दुनिया में कोई भी नहीं जी सकता, धन चाहिए। लेकिन अपने मूल्यों को बलि दे देना दूसरे मित्र। दूसरा मित्र कौन था? मनुष्य के मित्र संबंधी, जो कोर्ट के दरवाजे अर्थात शमशान भूमि तक छोड़ करके आ जाते हैं और जब वहां से निकलते हैं तो नीम का पत्ता खाते हैं। आज से हमारे तुम्हारे संबंध कड़वे, तिनका तोड़ते हैं। आज से हमारे तुम्हारे संबंध टूट गए, अब हमारे पास नहीं आना। और तीसरा मित्र है मनुष्य के किए गए श्रेष्ठ कर्म, जो ही उसका साथ देते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, किस चीज का अहम, किस चीज का, जो अपने साथ जाना है, गुणों का भी अहम नहीं करना तो बाकी और किस चीज का हम कर सकते हैं। इसलिए जो मिसाल हमारे बड़े बुजुर्ग देते रहे कि जितना जो फलदार वृक्ष होता है उतना ही वो झुकता है, आपने अगर किसी को सुधारना है, कोई चीज उठानी है, तो आपको झुकना होता है। तो झुकना बुरी चीज नहीं। हमारे यहां चलता है, आप देखते हैं हमारे पास यहाँ पे सारे यूथ हैं, यंग लोग हैं ना, यूथ हैं। तो दीदी मैं क्यों झुकूं? तो मैं कभी पूछती हूँ, अच्छा झुकने से तुमको कुछ नुकसान हो जाएगा? क्या नुकसान होगा बताओ? आपकी महानता है, इस समय झुक जाओगे आपकी महानता है। वो इस समय नहीं स्वीकार करेगा, दिल में रियलाइज करेगा। इसलिए अहम, अभिमान, ये सब चीजें अपने व्यक्तित्व के ऊपर एक प्रकार का दाग, जिसे हमने निकालना है। उपलब्धि हो और उसे बांट दो, उसमें आशीर्वाद मिलेगा, सबकी शुभ भावनाएं मिलेंगी, अपने देश में बहुत अच्छी रस्म है। कहते जब प्रसाद हो तो उसको क्या करना चाहिए? बांट के खाना चाहिए। प्रसाद माना विशेष चीज है ना, बांट के। ठीक है, यहां मैं समाप्त करती हूँ और प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। जितना जो करे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग 100% इस पर विजयी हैं, कदापि नहीं। अगर हम सब 100% विजयी हों तो आज हम इस सृष्टि पर ही ना हों। मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, लेकिन बातें ध्यान पर रखने से, उन पर अटेंशन रखने से धीरे धीरे घट जाते हैं। हाँ जी, यूं मानते हैं, एक है साइकोलॉजी की स्टडी के अनुसार ईगो, सुपर ईगो, वो उसको मैं नहीं ले रही हूं, लेकिन मैं अहम अभिमान के रूप से ले रही हूं। एक होता है अभिमान होना, एक होता है अहम होना, एक होता है जहां मेरे गुण विशेषताएं हैं उनकी कॉन्शियसनेस का होना और थोड़ा सा उसके प्रति प्राइड रखना, और एक होता है अहम, जो दूसरे को हीन, तुच्छ आदि दिखाने की भाव, वो ज्यादा नुकसानकारक है। इसमें रेजिस्टेंस जहां है वहां अटैचमेंट हो सकती है, परंतु इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई चीज राइट नहीं है तो आप नेचुरल रेजिस्ट करेंगे ना। डिटर्मिनेशन में पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, पॉजिटिव होगा, और जो स्टबननेस है उसमें पॉजिटिव जरूर नहीं। डिटर्मिनेशन में अगर आपको कोई व्यक्ति दूसरा रास्ता दिखा देगा, आप उसको भी उतने डिटर्मिनेंट वे से कर लेंगे। स्टबननेस में आई विल गेट अटैच्ड। अटैचमेंट नहीं रखो, प्रेम रखो, प्रेम रखो, इन्वॉल्वमेंट रखो, सहानुभूति रखो। अटैचमेंट दुख देती है। वी शुड नॉट, फर्स्ट थिंग इज आई शुड बॉदर अबाउट माई सेल्फ। आई एम द मास्टर टू राइट माई ओन स्क्रिप्ट, ठीक है। इफ समवन एल्स, आई विल एक्सप्लेन, इफ समवन एल्स इज राइटिंग माई स्क्रिप्ट आई विल नॉट लाइक इट। दूसरा व्यक्ति जो है वो भी नहीं चाहता कि मैं उसके किसी चीज में इंटर। इफ आई स्टार्ट माइंडिंग अदर्स बिजनेस माई ओन विल गो बैंक्रप्ट, कहावत है ना। तो मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी है कि मैंने अपने को देखना है। लेकिन मैं अगर ऐसी पोजिशन में हूं जहां मैं देखती हूँ मेरे जूनियर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई जूनियर ऑल्सो, जहां मैं देखती हूँ मेरे जूनियर्स जो है वो कहीं गुमराह हो रहे हैं, तो मैं इंटरफेयर नहीं, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं उन्हें राह दिखा सकती हूँ, ठीक है। दैट इज द थिंग। आपका प्रश्न प्रेम और अटैचमेंट, प्रेम और अटैचमेंट है मोह। मोह परेशान करता है, प्रेम परेशान नहीं करता। ओके, चलते हैं साइलेंस में। पांव धरती पर करें और जो आपकी गोद में रखे हैं कागज वगैरह सब धरती पे कर दीजिए। कमर सीधी, तीन बार गहरी सांस लेकर के निकाल दीजिए। स्वयं को अति शक्तिशाली अति शांत स्वरूप आत्मा अनुभव करें। स्वयं को अच्छे पावरफुल संकल्प प्रदान करें स्वरूप शुद्ध प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप इन कर्मेंद्रियों की राजा मेरे चहु ओर शांति प्रकाश ही प्रकाश है। शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैला रहे ओम।